जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। छुपते नहीं हो सामने, आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, धैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। आप ही अपना पर्दा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
अब तक हमने विचार किया कि कैसे 12 निदान, द्वादश निदान जो बुद्ध ने बताए, उससे मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म और मृत्यु के भय से और चक्र से बाहर निकलता है। जब तक स्पर्श है, जब तक वेदना है, जब तक संस्कार है, जब तक अविद्या है, तब तक ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। फिर हमने जाना कि भिन्नता का नाम ही जीवन है, कि सब दिन सब समय जीवन के सब पड़ाव सब अंतराल एक से नहीं हो सकते, निरंतर कुछ ना कुछ जो है भिन्न होता रहेगा। और तीसरे प्रकरण में हमने जाना कि हमारे जीवन में जो जो हमारे साथ घटित होता है, ऐसा संभव है कि वो शायद हमारे कर्मों के कारण नहीं हो रहा। दर्द तो सबके जीवन में होगा, दुख है या नहीं वो हमारे हाथ में। जो मेरे साथ घटित होता है उसको मैं कैसे लेता हूं, उसको देखने का मेरा ढंग क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है, किस पहलू को मैं आगे रखता हूं, उस पर निर्भर करता है कि वो मुझे दुख रहा है या नहीं। और हमने जाना कि जीवन जो है इच्छाओं का घर है, और इच्छा रखना बुरा नहीं है, परंतु प्रत्येक इच्छा का एक बोझ होता है, प्रत्येक इच्छा की एक कीमत जो है मनुष्य को चुकानी पड़ती है। और हमने पांचवें प्रकरण में जाना कि दुख जो है मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। बुद्ध ने तो कहा जीवन ही दुख है, संसार ही दुख है, दुख का एक कारण है, उसका निवारण हो सकता है और उसका एक मार्ग है। फिर दुख से निकलने की युक्ति, दो भागों में हमने उस पर विचार किया कि जिससे मनुष्य दुख में जाए ही ना, ऐसा क्या है। क्योंकि याद रहे, दर्द में जाने की बात नहीं कर रहा, जिससे दुख ना प्रतीत हो मनुष्य को, वो है सरल जीवन, सरल व्यवहार। अर्थात सरल व्यवहार, सच्चे शब्द, मीठे शब्द, और एक सृजनात्मक कार्य में जो मनुष्य लगा हो। जब हम कुछ भी सृजनात्मक करते हैं तो हम अपने आप सकारात्मक हो जाते हैं, प्रकाश की ओर देख रहे हैं तो अंधकार जो है अपने आप सीमित हो जाता है। और हमने चरित्र बल के बारे में बात की थी कि अंत में जीवन के इस जो ये एक युद्ध है, अगर इसको युद्ध कहा जाए, तो इसमें देर तक रुकने के लिए, इसमें स्थिर रहने के लिए, स्थित रहने के लिए मनुष्य के चरित्र में एक बल होना चाहिए। और हमने ये भी कहा कि चरित्र बल से मेरा अर्थ ये नहीं कि क्या आप जो कर रहे हैं वो नैतिक है या अनैतिक है, वो तो सबकी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। लगभग सभी के जीवन का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा रहस्य होता है जो वो चाहता है कि किसी दूसरे को मालूम ना हो। बल्कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं, विभूति, उनका नाम रामदास हुआ है, अमेरिकन, और नीम करोली बाबा के पास जब वो गए तो दो चीज़ें उन्होंने कहा, दो चीज़ों ने मुझे बहुत ही सुख दिया नीम करोली बाबा के पास। पहला, उन्होंने कहा मेरे जीवन में ऐसे बहुत से पल होते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाहता था किसी को ना पता चले, जो किसी को पता चल गई, मेरे अपनों को पता चल गई तो मुझसे प्रीति करना छोड़ देंगे, या वो मुझे बुरा कहेंगे या मुझे गलत समझेंगे। परंतु मेरे गुरु जो थे, उस व्यक्ति ने कहा, रामदास ने, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता था फिर भी वो मुझसे प्रीति करते थे। तो मेरी दृष्टि में उन्होंने कहा कि ये एक संत की पहली पहचान थी कि मेरे जीवन में कोई मुझे ऐसा मिला जो मेरी सब कमियां, सब गलतियां, सब रहस्यों को जानने के बावजूद भी मुझसे प्रेम करता था। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि मुझे वो इसलिए संत प्रतीत होते थे कि वो सबसे प्रेम करते थे, वो तो संतों का स्वभाव ही है, संतों को सब अच्छे लगते हैं। मेरे लिए असमंजस में डालने वाली बात, मुझे विस्मित कर देने वाली बात यह थी कि जब मैं उनके आसपास होता था मैं सबसे प्रेम करता था, कि मुझे सब अच्छे लगते थे, मुझे सब प्यारे लगते थे, मुझे सब पर एक प्रीति का भाव जो है जागृत होता था। जब मेरे मन में ऐसा भाव आया, उन्होंने कहा, तो मैंने जाना कि मैं वास्तव में ही एक संत की संगति में बैठा हूं। फिर हमने विचार किया कि कैसे सृजनात्मक और सकारात्मक कर्म से ही मनुष्य अपने दुख से बाहर आ सकता है, क्योंकि दुख ऊर्जा है, दर्द वो है जो घटित हो रहा है, साथ में दुख वो है जो मैं मान रहा हूं। तो दुख एक ऐसी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को शुभ कार्य में, सात्विक कार्य में, ज्ञानात्मक कार्य में, सृजनात्मक कार्य में, सकारात्मक कार्य में लगाओगे तो आगे बढ़ोगे। उसी ऊर्जा को विषाद में, शोक में और रोग में मानसिक, या उसी ऊर्जा को दुख में लगाएंगे तो हम नीचे की ओर जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था, भगवान ने बोला है उस जघन्य वृत्ति को तामसी बोला गया है। जब मनुष्य अपने आप पर इतनी दया करनी शुरू कर दे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो वो एक तामसी भाव होता है। जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी वो एक बात हमेशा बोलते थे, सेल्फ पिटी इज रुइनस, दे सेड, ही यूज्ड टू से ऑलवेज, कि कभी भी अपने आप पर दया मत करना। जो व्यक्ति अपने आप पर दया करता है वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। इससे ये अर्थ नहीं कि आप अपने आप से प्रेम ना करो या स्वयं का ध्यान ना रखो, बल्कि उसका बिल्कुल विपरीत। जब मनुष्य अपने आप पर दया करता है तो उसके साथ जो घटित हो रहा है वो किसी दूसरे को दोषी ठहराता है उसके लिए, और जब तक मैं किसी दूसरे को दोषी ठहराऊंगा तब तक मैं अंतर्मुखी नहीं हो सकता। और जैसा कि हमने कहा था, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हम अपनी ओर ना देख पाएंगे, क्योंकि हमने बोला था कि आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा क्या है, कैसे पता चले कि मनुष्य अपने अध्यात्म के पथ पर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसका मूल लक्षण होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को देख पाता है। एक साधारण व्यक्ति अपनी कमियों को नहीं देख पाता, एक साधारण व्यक्ति हमेशा दूसरे की कमियों को देखता है। उसके लिए अपने हर कर्म के लिए एक उत्तर होता है उसके पास कि मैंने तो इसलिए कहा, मैंने तो उसलिए किया, मैंने तो ये सोचकर ऐसा किया, मैंने तो वो सोचकर ऐसा सुना या कहा इत्यादि। उसके पास हमेशा एक कारण होता है। परंतु जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है वो अपना सामना करना सीख जाता है। उसी प्रकरण में हमने बताया कि एक अज्ञानी व्यक्ति और परम सिद्ध व्यक्ति में मूल अंतर एक ही होता है। अज्ञानी अधिकार से जीना चाहता है, अधिकार का बोध अहंकार के बिना हो नहीं सकता। अज्ञानी कहता है कि मेरा अधिकार है मुझे सुख मिले, मेरा अधिकार है मुझे धन मिले, मेरा अधिकार है मुझे सम्मान मिले, मेरा अधिकार है मुझे शांति मिले, मेरा अधिकार है कि सब मुझसे प्रेम करें। जहां अधिकार की बात आ जाती है, स्मरण रहे, वहां द्वंद शुरू हो जाता है, एक द्वैत का भाव है। क्योंकि जहां मैं अधिकार की बात करता हूं, वहां मेरा कहने का तात्पर्य है कोई ऐसा है जो उस अधिकार को पूरा करेगा, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। परंतु ज्ञानी जो होता है वो पात्रता पर जीवन को जीता है, वो इस बात को समझ जाता है कि यदि मैं पात्र हूं तो मुझे प्राप्ति होकर ही रहेगी, यदि मैं पात्र हूं तो प्रकृति मुझे मेरी गोदी में लाकर वो चीज मेरी झोली में डाल देगी। जैसे गुरु नानक देव जी के जीवन में एक, जब वो गुरु अंगद देव जी से मिले सबसे पहली बार, तो उनका नाम गुरु अंगद देव नहीं था, वो तो गुरु नानक ने उनको बाद में दिया, क्योंकि इतना अभिन्न अंग बन गए थे उनके जीवन का वो कि उनको नाम ही अंगद देव दे दिया गया। तो जब सबसे पहली बार मिले, उनका नाम था भाई लैणा सिंह, तो गुरु नानक देव ने देखा कि इनकी आंखों में एक विनम्रता है, कि इनकी आंखों में एक सेवा का भाव है। तो गुरु नानक ने उनसे कहा, भाई लैणिया, तेरा तो नाम ही लैणा है, तू लैन ही आया है, बाबियों को लो भी लैके ही जाएगा। कि अरे भाई लैणा सिंह, तुम्हारा तो नाम ही लहना है, तुम तो लेने ही आए हो, मुझसे भी लेकर ही जाओगे। और जो जो भी उन्होंने परीक्षाएं ली, एक से बढ़कर एक थी। कितनी कथाएं आती हैं उनके जीवन में, और हर कथा में गुरु अंगद देव जो हैं उत्तीर्ण हुए। एक बार गुरु नानक देव चले जा रहे थे, बहुत कीचड़ था, और उनके हाथ में एक लोटा था, गिर गया। लोटा गिर गया तो उनके बेटे भी थे साथ में, और बहुत सारे भक्त भी थे, और भाई लैणा सिंह भी चल रहे थे। तो गुरु नानक देव ने कहा, अरे मेरा लोटा गिर गया कीचड़ में, दलदल थी वहां पर। तो बेटों ने कहा कि बाबा जी, आप इस लोटे को छोड़िए, हम आपको आगे नया लोटा दे देंगे, अब हम जहां जा रहे हैं वहां फटाफट चलते हैं, ये तो कीचड़ में गिर ही गया, अब इसको क्या उठाना। तो एक दूसरे शिष्य ने कहा कि आपको हम ये लोटा नहीं प्रयोग करने देंगे, कीचड़ में गिर गया है, आपके लिए नया लोटा लाएंगे। परंतु बाबा जी ने फिर कहा कि मेरा लोटा गिर गया, भाई मेरा लोटा। तो भाई लैणा सिंह ने दलदल में छलांग लगा दी, और सारे कपड़े उनके कीचड़ से लथपथ हो गए, फटाफट लोटा बाहर निकाल के लाए, और उस लोटे को उन्होंने धो दिया, पीतल का था, एकदम चमका दिया। सब चल पड़े। बाद में गुरु नानक ने कहा कि लैणिया, क्यों कितने में, तुमने ऐसा क्यों किया, सब तो मुझे नया लोटा देने को चाह रहे थे, तुमने कीचड़ में से मेरा लोटा निकाल डाला। तो भाई लैणा सिंह ने कहा, गुरु साहब, आपने अपने मुखारविंद से आपको दो बार बोलना पड़ा, मुझे तो इसी बात का दुख है, आप भी जानते हैं लोटा है, आप भी जानते हैं कीचड़ है, आपके मुख से जो भी निकला है सत्य वचन है, आपने कुछ सोचकर ही कहा होगा मेरा लोटा गिर गया। तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उस समय अपना दिमाग ना लगाऊं। तो दो मूल होते हैं। कल जो हमने बोला था आपसे कि यदि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसके चार पहलू हैं, चार ऐसे कार्य हैं जो यदि मनुष्य उसमें संलग्न हो तो निश्चित रूप से उन्नति करेगा। और मैं चाहता था कुछ सरल चीज आपके लिए लेकर आऊं, कोई इतनी कठिन चीज ना बोलूं कि सेवा करो या ध्यान लगाओ, ना ध्यान लगे ना सेवा हो, एक में मन को मारना पड़ता है एक में अहंकार को, दोनों ही बड़ा कठिन है। तो इसलिए समाज चाहता है कोई शॉर्टकट दे दिया जाए, कुछ ऐसा रास्ता जिसमें ना अहंकार हमारा नष्ट हो ना ही मन को मारना पड़े, कोई लेटे लेटे जप हो जाए, कोई सोते सोते कुछ हो जाए, या कि ऐसा नहीं हो सकता सो जाऊं वही मेरी समाधि है। तो बुद्ध जो है चले जा रहे थे एक नए गांव में प्रचार करने, जीवन पर्यंत मगध प्रदेश से बाहर बुद्ध जो है गए नहीं, बस उसी उत्तर भारत में उसी और उन्होंने प्रचार किया। तो जब वो निकल रहे थे वहां से एक रस्सी पड़ी हुई थी गीली, बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बोला शरीपुत्र इस रस्सी को उठाओ तो जरा। शरीपुत्र बहुत ही विद्वान थे और जो विद्वान होता है उसकी बस एक ही कमी होती है, उसका दिमाग कभी चुप नहीं करता। तो समस्त बुद्ध के जो प्रवचन शास्त्र हैं, निकाय शास्त्र विशेष रूप से, सबसे अधिक प्रश्न शरीपुत्र ने किए हैं बुद्ध से। तो उन्होंने कहा कि रस्सी उठाइए, उन्होंने कहा तथागत, रस्सी उन्होंने उठा ली शरीपुत्र। देखो तो कैसी प्रतीत हो रही है तुम्हें बनते, बहुत दुर्गंध आ रही है इस रस्सी से, आपके करीब नहीं ला सकता इसको, ये तथागत के योग्य नहीं है। अच्छा तो किसी जो साथ में खड़ा है भिक्षु उसको दे दो। उन्होंने वो रस्सी उसको पकड़ा दी। तुम्हें कैसी प्रतीत हो रही है, बुद्ध ने कहा, शास्ता इतनी दुर्गंध है मुझे लगता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, दुर्गंध से भरी हुई है रस्सी। चार पांच को और पकड़ाई, सबसे पूछा इस रस्सी को पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है। सबने कहा कि बहुत दुर्गंध है। तो बुद्ध ने कहा कि ये किस चीज की दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा मछलियां पकड़ने के लिए शायद इस रस्सी का प्रयोग किया गया, किसी जाल में पानी में सनी रही होगी, दुर्गंध इसमें पूरी तरह रच चुकी है, समा चुकी है। ऐसे ही बुद्ध ने कहा जिसकी संगति करोगे वो तुम में रच जाएगा। देखो ये रस्सी ना अभी मछली है ना जल है, परंतु इसमें से कैसी दुर्गंध आ रही है। तो सबने कहा तथागत हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं, परंतु अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बुद्ध ने कहा अपने हाथों को सूंघ कर देखो, तो हाथों को सूंघा तो हाथों में से भी वही भयंकर घृणित दुर्गंध आ रही थी। थोड़े ही समय की संगति जो है चीरकाल तक की दुर्गंध दे सकती है भिक्षु, बुद्ध ने कहा। और मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूं शरीपुत्र, तुम्हें क्या लगता है जब ये रस्सी बनी, जिस सन से बनी, और जब ये रस्सी बनी क्या तब उसमें दुर्गंध थी? नहीं तथागत, उस समय इसमें कोई दुर्गंध ना थी। तो ये दुर्गंध बाद में आई, ये दुर्गंध संगति से आई। तो पहला आध्यात्मिक उन्नति का मूल होता है सत्संग। और सत्संग केवल ये नहीं जो गुरु के पास बैठकर किया जाए, सत्संग वो होता है कि आपकी संगति किसके साथ है, और जिस किसी के भी साथ है उसके साथ जब आप बैठते हो तो किस प्रकार की बातें करते हो, किस प्रकार का चिंतन करते हो। लम्हे तो वही हैं चंद साथ में बिताने के, उस समय आप एक दूसरे से सुख साझा कर रहे हो या दुख साझा कर रहे हो, उस समय निंदा कर रहे हो या कुछ शुभ बोल रहे हो अपने मुख से। क्योंकि ये रस्सी की भांति दुर्गंध वाली बात है, जितनी अधिक संगति होगी उतना तीव्रता से ये दुर्गंध जो है आएगी, जितने लंबे अंतराल की संगति होगी उतने लंबे समय तक की दुर्गंध रहेगी। कहते हैं एक व्यक्ति एक नौकरी के लिए जाता है, लड़का होता है, नया नया कॉलेज से निकला होता है, तो इंटरव्यू देता है, उसके बाद उससे पूछता है कि तनख्वाह कितनी होगी। उसने कहा जी आपकी तनख्वाह 5,000 रुपये होगी। 5,000 तो बहुत कम है, उसने कहा 5,000 में तो मेरा तेल पानी का खर्चा भी नहीं निकलता महीने का। उसने कहा अगर आप अच्छा काम करते रहेंगे हम थोड़ी देर देखेंगे, 3 महीने बाद हम इसको दुगनी कर देंगे, 1 साल के बाद 15,000 आपकी तनख्वाह हो जाएगी। 1 साल बाद 15,000 हो जाएगी? उसने बोला, मालिक ने, हाँ 1 साल बाद फिर आऊंगा, नौकरी मेरी तैयार रखो, 1 साल बाद आकर ही करूंगा सीधा, 15,000 पे शुरू करूंगा, 5 पे क्यों करूं। एक इंग्लिश में शब्द होता है ना टॉनिक, एक होता है बाम। टॉनिक वो होता है जो शरीर को पुष्ट रखने के लिए हम पीते हैं, बाम अर्थात मरहम या मलहम, ये तब लगाई जाती है जब चोट लग चुकी है। तो सत्संग मलहम नहीं है, सत्संग टॉनिक है। जब दुख बहुत बढ़ चुका है फिर सत्संग से काम नहीं चलेगा, वो तैयारी सारी पहले करनी होती है। सत्संग से मनुष्य शुद्ध होता है, और शुद्ध मनुष्य का प्रसन्न रहना, सुखी रहना सुगम हो जाता है। बिना सत्संग के दिमाग की खिड़कियां जो हैं खुलती नहीं। सत्संग एक ऐसा समय होता है आपके दिन में या आपके जीवन में, उसको करने से दिमाग के किवाड़ खुल जाते हैं मनुष्य के, क्योंकि आपको एक सोचने का पहलू मिलता है। और यदि सत्संग जो है गुरु की संगति में हो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि जब आप किसी को गुरु मान लेते हैं आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार मुझसे जब प्रश्न किया जाता है कि मैंने कहीं से दीक्षा ली हुई है आपसे भी ले लूं, आप भी दे दीजिए, तो जल्दी जल्दी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि यदि उनकी बात नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनोगे, और जब तक सुनोगे नहीं तब तक अमल नहीं करोगे, जब तक अमल नहीं करोगे तब तक उस पर कार्यरत नहीं होगे, जब तक कार्यरत नहीं होगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी, और यदि प्राप्ति ना हुई तो बाद में कोई गुरु बेकार था, जबकि स्वयं के कर्म में कमी थी। तो पहला है सत्संग, परंतु सत्संग से भी विशेष एक चीज होती है, यदि वो हो तो सत्संग बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। यदि दूसरी वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन का हर क्षण सत्संग हो जाएगा। जो किसी भी क्षेत्र में उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं, उस अवस्था में पहुंचने के पीछे उनका कई कई घंटों का, हजार घंटों का अभ्यास होता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए सितार बजाता हो, तो यदि वो बहुत सुंदर राग छेड़ रहा है तो ये नहीं कि उसने सारा अभ्यास सितार पर बैठकर ही किया है, वो तो 5-7 हजार घंटे किया ही होगा। उसके अतिरिक्त भी जब वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उसके मन में सितार ही चल रही है, कोई राग ही चल रहा है, वो हाथों से सितार ही बजा रहा होगा चाहे हाथों में सितार ना हो। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर भी यदि मनुष्य चाहे कि मेरा हर क्षण साधना का हो जाए, हर क्षण जो है समर्पण से यदि भरा हो, तो हर क्षण हर पल साधना हो जाता है। और वह दूसरा पहलू है समर्पण। हम अभी श्री गुरु नानक देव जी की बात कर रहे थे, उनके जीवन में सबसे अधिक समय उनके साथ बिताया मर्दाना ने। इतना समर्पित रहे मर्दाना अपने गुरु को कि पूरे जीवन काल में एक भी ऐसी कहानी नहीं, एक भी ऐसा किस्सा नहीं जिसमें उन्होंने अपने गुरु का वचन काटा। मुसलमान थे, जब वो बीमार हो गए, मरने वाले थे, तो गुरु नानक देव ने उनसे पूछा, मर्दानिया तुम्हारे शरीर को दफनाएं या जलाएं, क्योंकि मुसलमानों में दफनाने की रीत। तो उन्होंने कहा, गुरु साहब जब सारा जीवन ही आपको दे दिया है, जब जीवित शरीर आपके उसमें रहा समर्पित, तो मृत शरीर को मुझे क्या लेना देना, आप जैसे आपको पसंद हो आप कीजिए, दफनाना है दफनाइए, जलाना है जलाइए। कहते हैं एक बार जब वहां मुगलों का युद्ध हुआ तो बहुत लोगों की, भारी संख्या में लोग मारे गए, तो उदासी पर वो जो जा रहे थे गुरु नानक देव जो तीर्थ यात्रा पर, और मर्दाना ने उनसे कहा कि हे मेरे गुरु साहिबान, आप इस पृथ्वी पर हैं, इस पवित्र भूमि पर हैं, फिर भी इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारे लोग क्यों मारे गए, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था, कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो सैनिक थे वो भी मारे गए, जो सैनिक के कुछ परिवार थे वो भी मारे गए, जो निहत्थे थे, निर्दोष थे, जिनका कुछ युद्ध से लेना देना नहीं था वो भी मारे गए, ऐसा क्यों? तो नानक साहब ने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें कल मिल जाएगा मर्दाना। उसने ये नहीं कहा, पर कुछ तो थोड़ा सा बता दीजिए अभी, ये नहीं कहा, कुछ तो रहस्यमय बताइए, सत्य वचन जो बोल दिया, बस सत्य वचन। अगले दिन दोनों दोपहर को रुके विश्राम के लिए, और जैसे कि गुरु नानक देव की एक बड़ी श्रेष्ठतम संत प्रवृत्ति थी, ना केवल कि मर्दाना उनका ध्यान रखते थे, वो भी मर्दाना का खूब ध्यान रखते थे, सेवा तो मर्दाना ही करते थे, परंतु गुरु नानक को भी हमेशा रहता था कि मेरा मर्दाना ठीक है या नहीं। तो कड़कती धूप थी, गुरु नानक ने कहा कि तुम थक गए होगे मर्दाना, थोड़ी देर विश्राम कर लो। एक पेड़ आया पेड़ के नीचे, उसने कहा, बाबा जी अभी आपके विश्राम करने से पहले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं, उन्होंने कहा, मर्दाना मैं कह रहा हूं विश्राम कर लो। कर मैं लेट जाता हूं, आपका आदेश है, पर मेरा मन तो आप ही में लगा हुआ है, मैं भी विश्राम कर रहा हूं। मर्दाना ने तुरंत चादर बिछाई और उनके लिए गुड़ का शरबत बनाया कि आप गर्मी है पहले पी लीजिए, फिर मैं विश्राम कर लूंगा। उसमें से गुड़ का मीठा थोड़ा सा मर्दाने के हाथ पे लगा रह गया। मर्दाना बहुत थके हुए थे, सो गए। जब सो गए तो चींटियां जो हैं आनी शुरू हो गईं। बहुत सारी चींटियां आकर मर्दाने के हाथ पर बैठ गईं और गुरु नानक देव जो हैं देखते रहे, कुछ उन्होंने किया ना। इतने में एक चींटी ने मर्दाने को काट लिया। मर्दाने तुरंत उठ के ऐसे हाथ झटक दिया सारा, देखा चींटियां इतनी सारी तो ऐसे हाथ से साफ कर दी। उसमें बहुत सारी चींटियां जो हैं मारी गईं। तो गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे, क्यों मर्दान्या, पंजाबी में बोल देता हूं फिर हिंदी में बताऊं, क्यों मर्दान्या, कल पूछ रहे सी ना कि मैं मरे अन्य बंदे, आज कीड़ियां की मैं मरियां, कल पूछ रहे थे कि इतनी चींटियां, इतने इतने लोग कैसे मर गए युद्ध में, आज इतनी चींटियां कैसे मर गई, एक ही ने काटा था, कई सौ क्यों मार दी तुमने। संगति का यही प्रभाव होता है, जहां हम बैठते हैं, जहां हम सुनते हैं, उसका एक प्रभाव होता है। और समर्पण का भी वही प्रभाव है। समर्पण से मनुष्य के मन में प्रश्न जो हैं खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि मर्दाना जो है इतना समय बिताते थे गुरु नानक के साथ, तो आसपास वाले बहुत लोग जलते भी थे, क्योंकि अज्ञानी को अपनी कमी नहीं दिखती ना। हर कोई सोचता है ये समय मैं भी बिता सकता था, कि बाबा जी ने मुझे अपनी सेवा में क्यों नहीं रखा, इस मर्दाना को रख लिया, मैं भी ऐसे भाग भाग के काम कर सकता था। तो सभा बैठी हुई थी, मर्दाना को अंदर भेजा हुआ था चाय बनाने के लिए, और कुछ जो शिष्य थे उन्होंने गुरु नानक देव से इस प्रश्न को उठा दिया कि बाबा जी थोड़ा सा संशय है, बात चलती है थोड़ी, समाज में अच्छा नहीं लगता, सब बोलते हैं कि आप संत होकर भी, इतने श्रेष्ठ सिद्ध होकर भी ये मर्दाना को ज्यादा तवज्जो देते हैं, कि सेवा करने वाले तो और भी हैं, इन्हीं को सेवा का सबसे ज्यादा अवसर मिलता है। तो गुरु नानक ने कहा कि इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, यदि मुझे बताना पड़े तो फिर तो दम ही नहीं रहा बात में। मर्दाना अंदर से चाय लेकर आते हैं और गुरु नानक देव उनको दो पैसे दे देते हैं, एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में, कहते मर्दानिया जा, एक पैसे का सच ले आओ बाजार से और एक पैसे का झूठ ले आओ। उसने कहा सत्य वचन और कह के चल देता है। दो तीन घंटे हर दुकान पर जाता है कि एक पैसे का सच दे दो, एक पैसे का झूठ, तुम्हारे पास सच है एक पैसे का दे दो, एक पैसे का झूठ दे दो। सब लोग कहते हैं ये कौन पागल आ गया, ये भला कौन सी दुकान से चीज मिलेगी। चार घंटे के बाद वो संध्या के समय वापस आ जाते हैं गुरु नानक के पास कि बाबा जी इस गांव में तो किसी दुकान पर ऐसा सामान नहीं मिला। तो गुरु नानक देव ने कहा कि देखिया शिष्यों को, मैं दुनिया में किसी भी और को बोलता, एक पैसे का सच ले आओ, एक पैसे का झूठ ले आओ, उसने मुझसे पहले 20 प्रश्न करने थे। वो क्या होता है, कहां से मिलेगा, आज तक तो सुना नहीं, कौन सी दुकान पे जाना है। वो हार जीत में मनुष्य पड़ जाता कि मुझे काम दिया है होगा या नहीं, कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा व्यंग उड़ाएंगे। जब मैं जाऊंगा दुकान पर जाकर पूछूंगा, कहते मर्दाना को भी पता है ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। परंतु उससे जो कहा गया उसने जाकर वैसा ही कर दिया। तो जो मुझमें इतना समर्पित हो, उन्होंने कहा, उसको ना रखूंगा तो किसको रखूंगा, मैं रखने वाला कौन हूं, वो खुद ही मेरे पास आ जाता है। और गुरुग्रंथ साहब में एक बड़ी सुंदर पंक्ति थी, मैंने सोचा कि आपसे बताऊंगा। जय तो प्रेम खेलन का चौ, सिर तरी तली गली मेरे आ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कनी ना की जय, होमे विच सेवा ना होवे ता मन बिरथा जाए। कि यदि इतना प्रेम का खेल खेलने का शौक है, इतना चाव है, तो फिर अपना अहंकार जरा बाहर रख के आओ। समस्त पूर्वीय संस्कृति में जूते और अहंकार बाहर रख के आना होता है। पाश्चात्य संस्कृति में सब धर्म स्थलों पर आप जूता डाल के जा सकते हो, भारतीय संस्कृति में नहीं। जूते के साथ अहंकार, जूता डालते ही एक अहंकार आ जाता है, कभी देख लेना। तो उनका यदि प्रेम के खेल का इतना शौक है ना, तो जाओ जरा अहंकार अपना बाहर रख के आओ। और होमे विच सेवा ना हो वे, जिसके मन में मैं हो, अहम हो, होमे अर्थात अहम अहंकार हो, वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। और जो सेवा नहीं कर सकता, मन बिरथा जाए, उसका जो समय है, उसकी जो ऊर्जा है, वो व्यर्थ होती जाती है। क्योंकि सेवा में आप कुछ सृजनन कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, अपने इस नश्वर शरीर को किसी शुभ कार्य में लगा रहे हो। बिना समर्पण के सेवा नहीं हो सकती, और बिना सत्संग के सेवा का भाव नहीं आ सकता। इसलिए मेरे अनुसार सत्संग और समर्पण नितांत आवश्यक हैं। यदि आप ध्यान नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। जप नहीं होता, कोई बात नहीं। ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं। मन भी नहीं शुद्ध हो रहा, कोई बात नहीं। झूठ बोलने से नहीं हट रहे, कुछ बात है, पर चलो कोई बात नहीं। पर जीवन के जो पल हैं, प्रतिदिन या कुछ समय निकालकर थोड़ा सत्संग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे मन जो है साफ होता है मनुष्य का। तो वो कहते हैं, मस्जिद मंदिर ये महखाने, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे हैं जाना आशा ने, कोई ये माने कोई वो माने, एक होने का तेरे कायल है, इंकार पे कोई माइल है, असलियत लेकिन तू जाने, एक खलक में शामिल करता है, एक सबसे अकेला रहता है, हैं दोनों तेरे मस्ताने, सब हैं जब आशिक तुम्हारे नाम के, क्यों ये झगड़े हैं रहीमो राम के, छुपते नहीं हो सामने, आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, देरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम, हैरान हूं मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, आप ही अपना पर्दा हो, तुम एक गोरख धंधा। इस प्रकरण में इतना ही।